நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண சேஷ்டாய பூதாய ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத் தேசதாரி ஜாய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசதி கௌர பக்த பிருந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வப்பிரதம் மைய கோசர்வாட் கே இஸ் பகுத் ஹி சுந்தர் காவ் பகுத் ஹி சுந்தர் வாதாவரண் மே ஆப் சப் யஹா கே காவ்வாசியோ ஜினோனே படே பிரேம் பூர்வக் ஆஜ் கே இஸ் காரியக்ரம் மே பாக் லேனே கே லியே ஜோ ஆயே ஹே உன்கோ மே அப்னி கிருதஜ்ஞதா பிரகட் கர்னா சாத்தா ஹூ கி ஆப் லோகோ நே இஸ் சுந்தர் உத்ஸவ் மே பாக் லேனே கா நிஷ்சய கியா. அபி ஹம்னே யே நகர் சங்கீர்த்தன் கியா ஔர் தத் பஷ்சாத் ஆப்னே தேகா கி ஹம்னே யே தோ சுந்தர் விக்ரஹோ கா அபிஷேக் கியா. இஸ் அபிஷேக் கா மத்லப் யே ஹே கி ஹம் உன்கோ ஹமாரே கர் மே ஆமந்திரித் கர் ரஹே ஹே ஔர் கஹ ரஹே ஹே கி பிரபு மே இஸ் கர் கா மாலிக் நஹீ ஹூ ஆப் இஸ் கர் கே மாலிக் ஹோ மே ஏக் கேர்டேக்கர் இஸ் சாரி ஜோ ஜிம்மேதாரி ஹே ஆப்கே சேவா மே மே நிபா ரஹா ஹூ. ये भावना गीता का सार है. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. गीता में भगवान कहते हैं कि पद्मपत्रमिवाम्भसा, जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में होते हुए भी पानी के स्पर्श से हमेशा वो अलिप्त रहता है, इसी तरह से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार संसार में होते हुए भी संसार के नहीं हो जाना, बल्कि संसार के सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो हमारे हृदय में है, उसको जागृत करना. गीता के अंत में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. हे अर्जुन, बहुत सारे तुमने धर्म बनाए के रखे हैं, पारिवारिक धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, गुण धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म बनाए रखे हैं, पर यह सबका उद्देश्य यह है माम एकम शरणम रजा, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम निर्भय रहो. भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इस संदेश को अर्जुन के द्वारा हम सब बद्ध जीवों को दिया है, पर जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतप, काल के प्रभाव से हे अर्जुन ये धर्म का नाश हो गया है. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने फिर से ये ज्ञान को अर्जुन को दिया, फिर से ये ज्ञान अर्जुन को दिया. पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ते गई, लोग इस गीता के संदेश को अपने जीवन में किस प्रकार उतारे ये नहीं जानते थे. भूल गए, नहीं समझ पाए और धर्म के नाम पर कई सारे अधर्म भी बढ़ने लग गया। आज से 500 साल पहले वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत होइलो से बलराम होइलो निताय, वही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जो विठल के रूप में यहां सुंदर बड़े सुंदर में विराजमान है गोसरवाड़ में ऑलरेडी, वो भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले बंगाल में नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उनके बड़े भाई बलराम जी बलदेव वो श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को एक भक्त का रूप धारण करके हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाया किस प्रकार गीता का संदेश जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कैसे भगवान की शरण जाना है, कैसे संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होना, ये उन्होंने सिखाया, ये उन्होंने सिखाया। और कैसे सिखाया? बहुत सरल उपाय, हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कोई भी चीज जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि का नाम, आप जिस स्थिति में भी हो, जहां भी रहो, स्थाने स्थितः, आप जिस स्थिति में भी हो वहीं रहो, कोई गृहिणी है, कोई शेतकरी है, कोई ऑफिस जाता है, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर, जो भी है, स्थाने स्थितः, आप स्थान में रहो, पर कृष्ण भक्ति जो है, भगवत प्रेम जो है, उसको जागृत करो, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अभी एक सुंदर नाटक करने वाले हैं, उसमें आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार अगर भगवत प्रेम जागृत नहीं किया हमारे जीवन में, हम कौन हैं, कहां से आए, किधर हमको जाना है, ये अगर जानेंगे नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कुत्ते बिल्ली भी आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, न्यूज़पेपर में देखिए, अखबार में देखिए, कितने लोग मर गए, बस आया राम गया राम, बहुत हो गए। मरने से पहले अगर ये समस्या जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का हमने निकाला नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के बद्ध जीवों के लिए बहुत सरल उपाय दिया है। कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। जो सतयुग में जब लोगों की आयु, लोगों की अवधि 1,00,000 साल होती थी, हजारों साल तपस्या करते थे, कृते यध्यायते विष्णु, हजारों हजारों साल तक हिमालय में जाके तपस्या करते थे, आज हमारे अंदर वो तपस्या करने की बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो मन की नियंत्रण करने की ताकत भी नहीं। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, आज वो यज्ञ करने के लिए शक्ति नहीं है, ऐसे ब्राह्मण नहीं है, ऐसे मंत्र उच्चारण करने वाले नहीं है, ऐसा शुद्ध सामग्री भी नहीं मिलता। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में दिन में 6 बार मंदिर में जाके 56 भोग लगाकर बड़े प्रेम से पूजा किया करते थे, आज साल में 1 बार जन्माष्टमी के दिन मंदिर में गए तो हमको लगता है भगवान के ऊपर हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो ये चीजें आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है, कब वो काम करेंगे, कब वहां से छुटकारा मिलेगा, कब परिवार के जिम्मेदारी लेंगे, कब करेंगे, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, इसीलिए कलयुग में बहुत सरल उपाय है, हरिर्नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कोई जरूरत नहीं है, अब हरि का नाम लो, संकीर्तन प्राय, संग में आकर कीर्तन करो, भगवान नारद मुनि को कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं हूं, वहां तुमको मुझे देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जा ही नहीं सकते, सबसे पहले इतना आसान नहीं है, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय शुद्ध, योगियों के हृदय में है, पर क्या हम देख सकते हैं उन्हें, नहीं देख सकते। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सॉरी नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम, यत्र गायन्ति मत भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे प्रामाणिक भक्त लोग एकत्रित होकर मेरा नाम का गुणगान करते हैं वहां तुम मेरा अनुभव करोगे, मुझे दर्शन कर पाओगे और मेरे जो संग का पूर्ण फायदा उठा पाओगे। पर अगर संग में आने का दो उद्देश्य है और कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमें, दो ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य? एक भगवान का कीर्तिगान करना और हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं दो ही उद्देश्य से, भगवान का कीर्तिगान करना और हमारे हृदय को शुद्ध करना। जब ऐसे प्रामाणिक लोग एक साथ एकत्रित होकर भगवान का गुणगान करते हैं वहां भगवान की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। इसका सबूत क्या है? सबूत यह है कि आपके अंदर जितने सारे अनर्थ हृदय में बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये इसका सबूत है। ये कलयुग का धर्म है हरि का नाम, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगेगी। बहुत सरल उपाय है, एक बच्चा भी भाग ले सकता है, क्या तकलीफ है? बच्चों को उपनिषद पढ़ने के लिए न दिमाग है न इच्छा है, किसी को नहीं है, किसी को समय नहीं है, किसी को इच्छा भी नहीं है, पर हरि नाम करने बड़ा आसान है। आज हमने देखा कितने सब लोग नाच रहे थे, बड़े कूद रहे थे, क्या क्या तकलीफ, कोई भी कर सकता है। तो वंदे श्री चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो शंदो तमोनुदो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दो भाई जो कृष्ण बलराम कलयुग में अवतरित हुए, इनके बारे में गुणगान करते हुए एक महान आचार्य कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के जो अवतरित है भक्त के रूप में उनको मैं प्रणाम करता हूं। नित्यानंद सह, जो अपने भाई नित्यानंद के साथ उदितो, उदितो मतलब उदित हुए हैं, जैसा एक सूर्य उदय होता है ऐसे भगवान 500 साल पहले उदित हुए। कहां से? गौड़ोदय, गौड़ देश, आज जिसको हम बंगाल कहते हैं, वहां एक सुंदर स्थान है नवद्वीप, वहां 500 साल पहले इन दोनों भाइयों का अवतरण हुआ। गौड़ोदय पुष्पवंतो, इनका उदाहरण सूरज और चंद्रमा से की गई है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का उदाहरण जो कंपैरिजन, तुलना सूर्य और चंद्र से की गई है। कभी आपने देखा है सूरज और चांद एक साथ ऐसे उदित हो रहे हो? इधर से सूरज उदित होता है तो उधर चंद्रमा डूबता है, उधर चंद्रमा डूबता है तो इधर सूरज उदित होता है। पर सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये दोनों भाई एक साथ, सूरज और चांद एक साथ उदित हो गए। चित्रो, चित्रो मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। सूरज की तुलना क्यों की गई है? अभी अंधकार हो गया है, सूरज डूब गया है, और जब सूरज उदित होता है तो दो चीज होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? जब सूरज उदित होता है तो क्या होता है? सूरज जब उदय होता है तो क्या होता है? अंधकार नष्ट हो जाता है, बहुत सरल बात है। जब सूरज उदित होता है तो दो चीज होता है, एक अंधकार दूर हो जाता है, ऑफ कोर्स अभी तो हम लोगों ने लाइट वाइट बना दी, नहीं तो अंधकार हो जाता है, और अंधकार दूर हो जाता है पहला, और दूसरा चीज हर एक चीज को सही तरह से हम देखने लगते हैं। पहले पहले हमको लगता था कि ये सांप है, बाद में पता चलता है ये तो वायर है, पहले एक पेड़ है, हम सबसे एक बिल्डिंग खड़ा है, बाद में देखा था अरे पेड़ है। सूरज जब उदित होता है तो हर एक वस्तु को सही तरीके से हम देख पाते हैं। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जो एक तरीका दिया है संग में आकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। जब ये कीर्तन करेंगे तो हमारे हृदय में ये सूरज उदित हो जाएगा, और जब सूर्य उदित हो जाएगा तो दो चीज होने वाला है। एक, हृदय के अंधकार, अंदर में जो अंधकार है, अंधकार दूर हो जाएगा। ये अंधकार में हम अज्ञान में, अंधकार मतलब अज्ञान, अंधकार में आदमी डरता है हमेशा, थोड़ा डर लगता है बाहर जाने में, पता नहीं क्या होगा। इसी तरह से अज्ञान के कारण हम डरते हैं मृत्यु कब आ जाएगा, बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, पर हम में से कोई है जो नहीं मरने वाला? हम में से कोई एक है यहां जो बुढ़ापा नहीं होने, जिसको बुढ़ापा नहीं आने वाली है, जिसको बीमारी नहीं आने वाली है? निश्चित रूप से आने वाली, भयभीत है हम, पर इस हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तों के संग में आकर कीर्तन करने से एक चीज होता है, ये अंधकार दूर हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा है अजो नित्य शाश्वत वयम पुराण, सच्चिदानंद आत्मा है हम, हमारी मृत्यु नहीं है। शरीर मृत्यु हो जाता है, आत्मा मृत्यु नहीं होती। और शरीर समझने के कारण हमेशा शोक करते रहते हैं, और शरीर समझने के कारण हमेशा विषय भोग करने में हमारा पूरा दिन चला जाता है, पूरा साल, पूरा जीवन चला जाता है। और जब हम हरिनाम करने लगते हैं भक्तों के संग में, तो इंद्र विषय, इंद्र तृप्ति या विषय भोग करने की प्रवृत्ति धीरे 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 कम हो जाती है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये अंधकार दूर होकर समझ में आ जाता है। विषय भोग करने की जो प्रवृत्ति है, प्रतिकूल चीजों को हम अपनाते हैं, वो सब चला जाएगा अपने आप, बिना कोई कोशिश किए, बिना कोई कोशिश किए हमारे सारी बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरा रहन सहन अपने आप दूर हो जाएगा। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्तों के संग में आकर हरिनाम कीजिए, यह अंधकार अपने आप दूर होगा। तीसरा अंधकार है कि हम अपने समझते हैं कि भगवान से भी परे कोई सत्य है। नहीं, सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य है, उनका ही आश्रय लेना बहुत जरूरी है। ये अंधकार दूर हो जाएगा और ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या? सूर्य जब उदय होता है तो हर एक चीज को समझ जाएंगे ठीक से कि ये भौतिक संसार नश्वर है, इसमें जो काम है कर लो, फटाफट यहां से निकलो। जाने से पहले भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना जरूरी है। धर्म का उद्देश्य यही है। धर्म का मतलब ये नहीं कि हमने पूजा किया, इतना बार आरती किया, इतना घंटी बजाया, इतना डोनेशन दिया, इतना कल हुंडी में डाला, ठीक है, पर कभी कभी हम लोग ये सब कर रहे हैं इसलिए कि भगवान हमें और थोड़ा पैसा दो, और थोड़ा यश दो, और थोड़ा नाम शेष दो, ताकि परमानेंटली हम इस भौतिक संसार में सड़ते रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पर जब हम हरिनाम लेते हैं भक्तों के संग में, तो समझ में आता है कि सच्चा धन भगवत प्रेम है। क्यों? सबसे बड़ा धन भगवत प्रेम क्यों है? क्योंकि भगवत प्रेम जिसके हृदय में आ जाता है, भगवान को ही खरीद लेता है वो। भक्ति जो है सबसे बड़ा धन है, भक्ति भगवान को ही खरीद लेता है। और जब भगवान जिसके दास बन गए तो सब कुछ उन्हीं का होगा। बहुत सुंदर मंदिर है यहां, सिद्धेश्वर मंदिर। शिवजी पद्म पुराण में पार्वती जी पूछती है उनसे, हे प्रभु, मैं हमेशा देखती हूं आप ध्यान कर रहे हो, हमेशा जप करते रहते हो, किसका करते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वराम। ये राम नाम लो, हरि का नाम लो। और आज इस सुंदर सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में शिवजी को प्रसन्न करने वाला हरिनाम हो रहा है, निश्चित रूप से वो भी प्रसन्न है। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल तरीका बताया है। आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, उन्होंने एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा घर घर में, हर एक घर में माता पिता बच्चे जो भी जितने लोग हैं एक साथ आओ घर में, और आपने कार में करताल नहीं है, मृदंग नहीं है, कोई चिंता नहीं, ताली बजाओ बस, और ये हरे कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। क्या तरीका है, कितना सरल है, बच्चे भी ले रहे, इसके लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए बहुत सारा घी लाना, ये यज्ञ करना, ब्राह्मण को लाना कोई जरूरत नहीं है। क्या चार लोग साथ में आकर नहीं कर सकते? इतना सरल तरीका है, इतना आसान और इतना शक्तिशाली तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुफ्त में सबको दे दिया। और हम इतने मूर्ख हैं कलयुग के, इसके लिए भी टाइम नहीं हमारे पास। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, टाइम नहीं है हमारे पास। आज आप जानो या नहीं जानो, मानो या नहीं मानो, समझो या नहीं समझो, पूरे विश्व भर में तकलीफ यही है कि लोग एक साथ आ नहीं सकते। अभी जिस हमारे प्रभु जी के यहां हम गए थे, दीपक खोर, हाँ उनके प्रभु, 40 लोग एक साथ रहते, बंबई में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, दो लोग भी एक साथ नहीं रहते, तू रह या मैं रह, तेरा मुझे सुबह 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 नहीं देख सकता। पहले पहले ज्वाइंट फैमिली साथ में रहते थे, अभी तो मियां बीबी भी साथ में नहीं रहते, हाँ सब अकेले अकेले रहते, पर तू रहेगा तो मैं नहीं रह सकता, बस तलाक फिनिश। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति केंद्र नहीं है, केंद्र अगर भगवान को नहीं रखेंगे तो वो परिवार टूटने वाला है शत प्रतिशत। आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अगर भगवान केंद्र नहीं है तो परिवार टूटने लगेगा, पर अगर भगवान को केंद्र बनाओगे तो पूरा गांव एक परिवार बन सकता है, पूरा देश एक परिवार बन सकता है, पूरा समाज एक परिवार बन सकता है, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार बन सकता है। प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज बताया, बहुत सुंदर उदाहरण बताया, आप इसके बारे में सोचिए। आप एक तालाब के पास जाइए, सुंदर तालाब, तालाब समझते हैं ना, तालाब में आप एक पत्थर लीजिए और पत्थर तालाब के बीच में फेंकिए, जहां वो पत्थर तालाब में गिरता है वहां से गोल 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 तरंगे निकलेंगी। आप 1000 पत्थर लीजिए और एक ही जगह पे फेंकते रहिए, जहां भी पत्थर तालाब में लगता है वहां से गोल गोल तरंगे निकलेंगी, पर अगर एक ही जगह सब पत्थर गिरेंगे तो एक तरंगे जो है दूसरे तरंगों को नहीं काटेगी। पर आप 2 पत्थर लीजिए, एक तालाब के इस कोने में डालिए और एक तालाब के उस कोने में डालिए, तरंगे निकलेगी पर एक एक तरंग दूसरे तरंग को काटेगी। क्यों? क्योंकि अभी 2 केंद्र हो गया तालाब में, एक इधर एक केंद्र, एक इधर एक केंद्र, और इसलिए दोनों तरंगे, हर तरंगे दूसरे तरंगे को बार बार काटेगी। इसी तरह से प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, अगर घर में भगवान को केंद्र बनाओ तब पूरे परिवार, चाहे वो भले 40 लोग क्यों ना हो, 50 लोग क्यों ना हो, एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, कोई एक दूसरे का कटेगा नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति समझता है भगवान इस घर के मालिक हैं, मैं तो एक दास हूं। अगर नहीं, भगवान केंद्र नहीं है तो हर एक व्यक्ति सोचेगा मैं यहां का मालिक हूं, मुझे जो चाहिए ऐसे ही होना चाहिए। पत्नी कहेगी मुझे जो अच्छा लगता है वही पकाना, पति कहेगा मुझे जो चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, बच्चा कहेगा मुझे जो चाहिए ऐसा होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में झगड़ा। निश्चित रूप से होने वाला है। भगवान को अपने घर में आमंत्रित करने का मतलब सिर्फ लाए, कोने में रख दिए, पूजा किए, दरवाजा बंद करके चले गए, ऐसा नहीं। भगवान को अपने घर में आमंत्रित करने का मतलब यह है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को कह रहे हैं, अपने पूरे समाज के, पूरे गांव के लोगों को ढिंडोरा पिटवा के जोर जोर से कह रहे हैं, मैं इस घर का मालिक नहीं हूं, भगवान इस घर के मालिक है, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस घर के मालिक है, मैं तो उनका सेवक हूं और मेरे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो लोग भी हैं वो उनके दास हैं, मेरे नहीं, मैं मालिक नहीं हूं, वो मैं हमारे घर के मालिक हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी हमारी विग्रह की पूजा सिर्फ एक दिखावा हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि ये इस घर के मालिक हैं, मैं उनका दास हूं और मेरा काम है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जितने मेरे परिवार लोग हैं इनको उनकी सेवा में लगाना है, इनको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना है, इनको बड़ा करना है और इनको भगवान का भक्त बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो कुछ भी इस घर में पकेगा भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करेंगे, तो वो प्रसाद न केवल पेट भरेगा बल्कि हमारे हृदय को भी तृप्त करेगा। ये भगवान को आमंत्रित करने का मतलब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भावना नहीं होगा तो फिर निरर्थक है ये सब। पूजा पाठ हमारा एक रिचुअल बन जाएगा, एक नाम के वास्ते बस करना है सुबह सुबह बस, ये इसका मतलब है। और तब आज के बच्चों को संस्कार देना है तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, जब तक मां बाप एक साथ आकर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे को क्या संस्कार मिलेगा। वो संस्कार देना है, बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी क्रिया जो है वो प्रचार करेंगे कि हम कर रहे हैं और क्योंकि भगवान हमारे मालिक हैं और हम सब बच्चे वही करेंगे, हम सब वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा, हम सब वही कपड़े पहनेंगे जो भगवान को अच्छा लगता है, इस घर में हम वही बातचीत करेंगे जो भगवान को पसंद, इस घर में हम वैसे ही रहेंगे जो भगवान को पसंद, जो गीता में भगवान ने बताया है उसके अनुसार रहेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आज्ञा के अनुसार। इसका मतलब है घर को हमने मंदिर बनाया, तब वो घर घर नहीं वो मंदिर बन जाता है, वो घर घर नहीं वैकुंठ बन जाता है। अगर हम भगवान को आमंत्रित अपने घर में करते हैं, देखिए आप उसी लोगों को आपके घर में आमंत्रित करेंगे जिसके लिए आपके हृदय में स्थान है कि नहीं। जिसके लिए आपके हृदय में स्थान नहीं है क्या उसको आपको घर में स्थान है उसके लिए? क्या आपके शत्रु को घर में बुलाएंगे? क्यों? आपके हृदय में आपके शत्रुओं के लिए स्थान नहीं है तो आपके घर में भी आपके शत्रु के लिए स्थान नहीं है। भगवान को अपने घर में बुलाने का मतलब है अपने हृदय में हमने भगवान को स्थान दिया है, प्रभु मेरे हृदय के भी आप मालिक हो, मैं मालिक नहीं हूं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान को घर में आमंत्रित करने का मतलब है हृदय का मालिक हमने भगवान को बनाया है, घर का मालिक हमने भगवान को बनाया है। और भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सथैव भजाम्यहम्। अगर जैसा तुम मेरे प्रति व्यवहार करोगे मैं वैसे भी तुम्हारे प्रति व्यवहार करूंगा। अगर हमने अपने हृदय में, अपने घर में भगवान को आमंत्रित करके स्थान दिया है तो भगवान भी आपको अपने हृदय में स्थान देंगे, भगवान भी आपको अपने घर में स्थान देंगे। वैकुंठ में रिजर्वेशन हो गया है क्योंकि आपने भगवान को अपने घर में स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया, भगवान भी अपने हृदय में आपको स्थान देंगे। और साधवो हृदयो मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, साधुओं के हृदय में भगवान है इसीलिए भगवान के हृदय में हमेशा साधु निवास करते हैं। और साधु का मतलब ऐसा नहीं है कि सर मुंडवा के गेरुआ वस्त्र पहन, साधु का मतलब है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीता है, सरल जीवन, शुद्ध जीवन, प्रामाणिक जीवन, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो ये सुंदर परिवार श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में अकेले हरि नाम करते जाते थे, दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते जाते थे, और जो भी मिलता था उसको गले लगाते थे। गले लगाते ही उसको इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता था, क्योंकि उसके हृदय में भगवत प्रेम डाल देते थे। तो वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते लगता था, और वो अपने गांव जाता था, वो गांव जाता था और वो गले लगाता था, और जिसको भी वो गले लगाया वो भी हरि बोल हरि बोल। फिर वो किसी और के पास और दूसरे गांव गया, उसको गले लग, वो भी हरि बोल। इस तरह से पूरे गांव के गांव भक्त बन गए, भगवान की शरण जाते। आप ये मत समझिए कि 500 साल पहले ये लीला हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला 10,000 साल तक चलने वाली है। आज जो आज शाम को ये कार्यक्रम है, ये चैतन्य लीला का एक भाग है, चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना है ये, जो अभी तक लिखा नहीं है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, ये कंटिन्यू है। ये आप मत समझिए कि बाई चांस हो रहा है ये सब, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, और उस लीला में हम भाग लिए हैं। आज एक व्यक्ति हमारे महादेव सुतार प्रभु, इन्होंने स्वीकार किया, इनको अच्छा लगा और ये आए हरि बोल करके आए, और इनके बाबा साहेब उनको बताया, उनको अच्छा लगा, वो हरि नाम करने लगे। फिर उनके दो लड़के लिए संदीप उदय, फिर वो सबको बोलने लगे। आज हम देख रहे कितने गांव कितने लोगों को हरि नाम सुनने को मिला, भगवान का दर्शन मिला, भगवान का अभिषेक देखने का मौका मिला, अपने जीवन को सफल करने का एक सुंदर सूत्र एक एक, एक संधि मिला। हमारे ऊपर निर्भर है, इसको हम स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो हमारा नम्र निवेदन है, ये कोई एक संस्था मत समझिए, ये हरे कृष्णा वाले ऐसा मत समझिए आप लोग। ये जो है शुद्ध भगवत गीता का संदेश है, जो भगवान ने 5,000 साल पहले दिया, और वही भगवान भक्त के रूप में आकर सरल तरीके से किस तरह से गीता का सार अपने जीवन में उतारे। साथ में आकर हरिनाम करो, संकीर्तन, संग में आकर कीर्तन करना। और ये दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है? दोनों हाथ उठाने का मतलब है दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मैं नहीं संभालता आप ही संभालो। हरे कृष्ण, जिस प्रकार द्रौपदी ने हाथ उठाया ना, द्रौपदी हाथ उठाई इस तरह से, पहले उसका जब निर्वस्त्र किया जा रहा था द्रौपदी को, क्या करती बेचारी अबला स्त्री, उसने हाथ उठा दिया। पहले उसको लगता था मेरे 5 पति हैं, ये है वो है, क्या है, सब कुछ खत्म, सब लोग सर झुकाए बैठे हुए थे। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कोई मेरे सहायता नहीं करने वाला, अब भगवान श्री कृष्ण ही सहारे में, हाथ उठा दिया। हाथ उठाने का मतलब है निस्सहाय भाव से। इसी तरह से हमारी स्थिति भी द्रौपदी के समान है, जैसे पिछले बार हम लोग यहां चर्चा किए थे, हमारी स्थिति भी द्रौपदी के समान है। हम लोग इस संसार में आए तो निर्वस्त्र अवस्था में आए, और जब जाएंगे भी तो निर्वस्त्र अवस्था में जाएंगे, और काल स्वरूप जो है दुशासन के समान, हरेक सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब एक गज साड़ी निकल गया, हरेक सूर्योदय और सूर्यास्त दूसरा गज साड़ी निकल गया। मृत्यु के पास पास जा रहे हैं हम लोग, तो मृत्यु आने से पहले अगर हम हमारे सर्वस्व प्रामाणिकता से, नम्रता पूर्वक, निस्सहाय भाव से, तीव्रता से एक बार भी भगवान के सामने हाथ उठाकर तीव्रता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी बुद्धि कम है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं निस्सहाय हूं, कृपया आप मेरे जीवन को चलाइए, मैं आपकी आश्रय आपका आश्रय ले रहा हूं, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। आपको बाहर की दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार देखने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा, आपके परिवार में एक चमत्कार होगा। सच्चा सुख मन की शांति और सच्चा आनंद का अनुभव होगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का देन। तो मेरा नम्र निवेदन है आप सब श्रद्धालु भक्त वृंद से, बहुत सुंदर गांव है, इतने सारे श्रद्धालु भक्त हैं, इतना सुंदर प्रांगण आजकल कहीं मिलता नहीं, बंबई में ऐसा हॉल नहीं मिलता, एसी हॉल से भी अच्छा है, तो इतना सुंदर वातावरण, परम भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु महादेव विराजमान है यहां। महादेव का दूसरा नाम है आशुतोष, जो मांगेंगे तुरंत दे देंगे, पर मूर्खतावश हम लोग उल्टा सीधा कुछ मांग लेते हैं। आप महादेव के सामने जाइए और बोलिए मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जो ठीक समझो आप मुझे दो। तो बोलेंगे बगल में जाओ, विठल के पास जाओ, राम का नाम लो, ये हरे कृष्ण महामंत्र लो और अपना जीवन सफल करो। वो खुद ले रहे, वो खुद भी यही बता रहे। तो ये सुंदर वातावरण अच्छा है, कृपया इस मौके का पूर्ण फायदा लीजिए। आपका आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपके परिवार में आप ऐसा एक वातावरण जानेंगे, अनुभव करेंगे जो आपने कभी किया नहीं होगा, और घर घर नहीं वैकुंठ बन जाएगा। ये सरल तरीका है। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं महादेव प्रभु और बाबा साहेब प्रभु और उदय संदीप, कितने लोग हैं बंबई में ऐसे नवयुवक जो दारू पी के सिगरेट पी के इधर उधर घूम के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसके साथ साथ हजारों लोगों को और भी साथ में ले जा रहे हैं। पर ये आदर्श परिवार को देख के मुझे इतना स्फूर्ति मिला आज, और उनके संपर्क में जितने भी परिवार आए कोई बुरी आदतें नहीं, हरि नाम ले रहे हैं, सबसे बड़ा कल्याणकारी काम कर रहे हैं हरि नाम लेके, पूरे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। किसको ऐसा इच्छा नहीं है कि हमारे बच्चे हमारे परिवार के सदस्य भक्ति करें, शुद्ध हो अपने जीवन को, जीवन सफल करें। तो ये सुनहरा मौका है, कृपया ये मत समझिए ये संस्था है वो संस्था है, ये शुद्ध भगवत गीता का संदेश है, ये कोई नया मैन्युफैक्चर नहीं किया हम लोगों ने, कोई नई चीज हमने नहीं दिया है, ये वही भगवत गीता है जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया। गीता आप देखेंगे वहां बाहर जो रखा हुआ है, जैसी आहे तैसी, उसका संदेश जैसा है वो हम लोग दिए हैं, क्योंकि वही भगवान ने भक्त के रूप में दिया है हमको, और उसी संदेश को संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने पूरे पाश्चात्य देश में बांटा, जो पैदा होते ही उल्टे सीधे सब काम करने वाले माया नगरी में रहने वाले लोग, वो लोग हमें आके बता रहे भगवत गीता क्या है, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं मालूम। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इसको कोई नई चीज न समझकर, कोई एक नया संस्था न समझकर, वही शुद्ध वही पुराना जो करोड़ों साल पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, और वही जो 5000 साल पहले अर्जुन को दिया, जो 500 साल पहले नवद्वीप में बांटा, वही आज उन्हीं की कृपा पूर्वक उस गुरु शिष्य परंपरा में हम सबको उपलब्ध है। क्या हम उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हमारे ऊपर है, यथे इच्छसि तथा कुरु। तो मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इस बहुत सुनहरा जो मौका है इसका फायदा उठाइए, परिवार में साथ आकर हर दिन कम से कम एक बार हरि का नाम लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री कृष्ण भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। एक बार कृपया दोनों हाथ उठाकर मेरे बाद बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर दिख रहा है हाथ हाथ सब उठा के, पर सिर्फ ये मुंह से नहीं आना चाहिए, हृदय से आना चाहिए। तो कृपया हृदय से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बड़े निस्सहाय भाव से और तीव्रता से और नम्रता से हमारे अंदर प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, आज मेरी हृदय की डोरी आपके हाथ सौंप रहा हूं, ये लीजिए। इस भावना से एक अंतिम बार बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री घोषरवाड़ भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। कृपया सर्व भक्तांना विनंती आहे, सर्व उपस्थित ग्रामस्थांना विनंती आहे की त्यांनी ध्यानपूर्वक काही सूचना ऐकाव्यात। माझा आवाज शेवटीपर्यंत ऐकू येतोय का? ऐकू येतोय, धन्यवाद। तर इथं उपस्थित सर्व ग्रामस्थ माताजी व प्रभूजी, आपण सर्वांनी ध्यानपूर्वक आणि अतिशय एकाग्रतेने एक चित्ताने राधा गोपीनाथ प्रभू यांनी जो आपल्याला भगवद्गीता व भागवतमचा संदेश दिला, हरे कृष्णा, राधा गोपीनाथ प्रभू यांनी जो आपल्याला भगवद्गीता व भागवतमचा साधा सोप्या भाषेत संदेश दिला तो सर्वांनी आपण एकाग्रतेने ऐकल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभारी आहोत आणि माझा आपल्या चरणी दंडवत आहे। पुढील कार्यक्रम
निकाजी, आज जा निकाजी, हे उचलून कर।
सगळ्यांचं लक्ष कुठं आहे मला कल्पना आहे। हरे कृष्णा। तर पुढील कार्यक्रम अशा प्रकारे असणार आहे, आता लगेचच आपल्या सर्वांच्या आनंदाकरता कोल्हापूर इस्कॉनचे भक्त आपल्या समोर एक लघु नाटिका सादर करत आहेत।
या लघु नाटिकेचं नाव